नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियाँ, देश दुनिया की बड़ी खबरें। वकालत की दुनिया में कपिल सिब्बल का बहुत बड़ा नाम है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति में भी इनकी पकड़ काफी मजबूत है। तभी तो समाजवादी पार्टी में बिना शामिल हुए उनके समर्थन से राज्यसभा जाने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। सिब्बल वकील और राजनीति के अलावा गाने भी अच्छे लिखते हैं। कपिल सिब्बल की जिंदगी बेहद शानदार रही है, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में वकील कपिल सिब्बल राजनीति में कैसे आ गए। कौन है कपिल सिब्बल? कपिल सिब्बल का जन्म 8 अगस्त 1948 को जालंधर में हुआ था। इनके पिता भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय भारत आ गए थे। पिता एक बेहतरीन वकील थे, इसीलिए उन्हें इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ की पदवी दी थी। कपिल सिब्बल ने शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ से की, इसके बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आए। यहाँ सेंट स्टीफन्स कॉलेज से उन्होंने इतिहास में बीए ऑनर्स किया और फिर फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी की और एलएलएम उन्होंने हार्वर्ड से किया है। वकालत के लिए सिब्बल ने छोड़ दी सिविल सर्विसेज। साल 1973 में कपिल सिब्बल ने यूपीएससी यानी भारतीय प्रशासनिक परीक्षा को पास किया, लेकिन उनकी रुचि लॉ के फील्ड में थी, इसीलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। पिता की तरह वह भी लीगल प्रैक्टिस करने लगे। सिब्बल 1989 से 1990 के बीच एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी के ऊपर महाअभियोग का मामला संसद में चल रहा था। सिब्बल को उन्हें डिफेंड करने का मौका मिला और ये मौका सिब्बल के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ। ऐसे हुई राजनीति में सिब्बल की एंट्री। दरअसल सिब्बल जस्टिस वी रामास्वामी को डिफेंड करने कोर्ट पहुंचे थे। उनकी बहस को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव इस कदर मुरीद हुए कि उन्होंने 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट ऑफर कर दिया, लेकिन वो बीजेपी की सुषमा स्वराज के सामने इलेक्शन हार गए। इसके बाद 1998 में लालू के सपोर्ट से वो बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए, लेकिन सिब्बल को इससे संतुष्टि नहीं थी। वो जनता द्वारा चुनकर लोकसभा पहुंचना चाहते थे, इसीलिए 2004 में उन्होंने चांदनी चौक से इलेक्शन लड़ा और बीजेपी की स्मृति ईरानी को हरा कर संसद पहुंच गए। गाने भी लिखते हैं कपिल सिब्बल। राजनीति और वकालत के अलावा सिब्बल के बारे में बात करें तो वह कविता के साथ साथ गाने भी लिखते हैं। साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म शोरगुल के लिए उन्होंने 2 गाने लिखे, पहला तेरे बिना और दूसरा मस्त हवा। मस्त हवा गाने को ऋषिता भट्ट और जिमी शेरगिल पर फिल्माया गया। नीलाद्री कुमार ने इस गाने का म्यूजिक दिया है। कपिल सिब्बल ने रौनक एल्बम के लिए भी गाने लिखे हैं, जिसे एआर रहमान ने कंपोज किया। इसके गाने भी लाजवाब हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति का जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। आलम ये है कि देश में जहां कहीं भी चुनाव होते हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ का नाम जरूर होता है। मगर एक वक्त ऐसा भी था जब योगी आदित्यनाथ का मन राजनीति से ऊब गया था, और वो भी राजनीति में कदम रखने के साल भर बाद ही। योगी आदित्यनाथ पर लिखी गई शांतनु गुप्ता की किताब योगी गाथा के मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि एक साल में ही उनका राजनीति से मन ऊब गया था। 1998 में पहली बार गोरखपुर से सांसद चुने गए थे। एक साल तक राजनीति में रहने और काम करने के अनुभव के बाद राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया था। 1999 में योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु से राजनीति छोड़ने की बात कही, लेकिन गुरु ने उन्हें सलाह दी। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ में गायों के चारे और भंडारे के अनाज की व्यवस्था करते थे। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु से प्रार्थना की थी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने कहा था कि राजनीति में मुद्दों की बात नहीं होती, लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन गुरु ने योगी आदित्यनाथ को बिना किसी स्वार्थ के राजनीति में काम करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने 1999 में चुनाव लड़ा और लोकसभा में भी पहुंचे थे। आज चुनावों में बीजेपी की जीत की गारंटी माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ अपनी जिंदगी का पहला चुनाव हार गए थे। वो एक छात्र संघ चुनाव था जिसमें योगी एबीवीपी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर विद्यार्थी परिषद ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय ही खड़े हो गए। उस चुनाव में योगी हार तो गए, पर उस हार में भी जिंदगी की जीत का मंत्र छिपा था, जो बात आज सब जान चुके हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।